नमस्कार भारत, तारीख 31 जनवरी दिन गुरुवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमेरिका में बर्फीला चक्रवाती तूफान, अब तक 7 की मौत। कुंभ में संतों की परम धर्म संसद में हुआ राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान।
जो तिथि निश्चित की है वह है फाल्गुन कृष्ण द्वितीया, अंग्रेजी तारीख है 21 फरवरी 2019।
इस्तीफा देने के बाद ICICI बैंक के CEO पद से क्यों बर्खास्त की गई चंदा कोचर।
वीडियोकॉन कंपनी ने बाद में इनके पति के कंपनी में, एक नई कंपनी में पैसा डाला था, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कहा जाता है उसका बड़ा गंभीर आरोप लगा था इनको।
होगा साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां और खेल की खबरें भी, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। उत्तरी ध्रुव की ओर से अमेरिका की ओर बढ़ रहे बर्फीले चक्रवाती तूफान की वजह से अमेरिका के मध्य पश्चिम राज्यों में भीषण ठंड पड़ रही है। जनजीवन पूरी तरह रुक गया है और अब तक कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। शिकागो शहर में तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे है, जबकि उत्तरी डकोटो में पारा 0 से 37 डिग्री नीचे पहुंच गया है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में विपक्ष के नेता खुआन ग्वाइदो को फोन करके अमेरिकी समर्थन का भरोसा दिया है। अमेरिका उन 20 से अधिक देशों में शामिल है जिन्होंने ग्वाइदो को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दी है। ग्वाइदो ने देश भर के लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। राजधानी काराकास में एक प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ग्वाइदो ने कहा, मेरी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हम पहले ही उपराष्ट्रपति, एग्जीक्यूटिव टीम के सदस्यों और सीनेटरों से बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और चिली के राष्ट्रपति से भी बात की है। अहम बात यह है कि उन्होंने हमारे प्रशासन को मान्यता दी है और संपूर्ण समर्थन दिया है। इसी बीच वेनेजुएला के लिए अमरीका के नए दूत इलियट अब्राम्स ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला सरकार की संपत्तियों की खोज कर रहा है और इनका इस्तेमाल मानवीय मदद में किया जाएगा। वहीं मादुरो ने कहा है कि वो ना ही पद छोड़ेंगे और ना ही नए चुनाव करवाएंगे। दूसरी ओर वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया ने राष्ट्रपति मादुरो के प्रशासन से जुड़े 200 से अधिक लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रवासी अधिकारियों के मुताबिक कोलंबिया स्थित एक वेनेजुएलियाई कंपनी की कमान लेने आए एक अधिकारी को वापस लौटा दिया गया है। मैक्सिको और उरुग्वे का कहना है कि वो वेनेजुएला संकट पर चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला रहे हैं। सऊदी अरब ने साल 2017 में शुरू की गई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम खत्म करने की घोषणा की है। इस दौरान सैकड़ों राजकुमारों, अरबपतियों और उद्योगपतियों को हिरासत में रखा गया था। सऊदी अरब की सरकारी समाचार सेवा के मुताबिक इन रईसों से $100 अरब से अधिक की संपत्ति और कैश जब्त किया गया है। 87 लोगों ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप स्वीकार करते हुए सरकार के साथ समझौता किया है। जिन 8 लोगों ने आरोप स्वीकार नहीं किए हैं उन्हें महाधिवक्ता के पास भेज दिया गया है। वहीं 56 अन्य मामले अभी तक नहीं निपटाए जा सके हैं क्योंकि इनमें आपराधिक आरोप भी तय किए गए हैं। साल 2018 की अंतिम तिमाही में टेक्नोलॉजी कंपनी फेसबुक ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। इस दौरान कंपनी ने $6.9 अरब कमाए हैं। पूरे साल में कंपनी की कमाई $22 अरब रही, जो बीते साल के मुकाबले 39% अधिक है। दक्षिण अमेरिका में बीबीसी के तकनीकी संवाददाता के मुताबिक निजता को लेकर उठे सवालों और स्कैंडलों के बावजूद फेसबुक की वित्तीय सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि भले ही यूजर कंपनी के स्कैंडलों पर ध्यान न दे रहे हों, लेकिन नियामक इन पर नजर रखे हुए हैं और जल्द ही भारी जुर्माना फेसबुक पर लगा सकते हैं। कानूनी दस्तावेजों से पता चला है कि ब्रिटेन स्थित अंतर्राष्ट्रीय बैंक बार्क्लेज करीब $200 अरब की संपत्तियों को लंदन से स्थानांतरित करके आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचा रही है, क्योंकि अब बैंक ब्रेग्जिट की स्थिति में अपनी आकस्मिक योजना को लागू करने के लिए और इंतजार नहीं करना चाहती है। बैंक अधिकारियों को चिंता है कि ब्रेग्जिट के बाद यूरोपीय संघ के अपने ग्राहकों तक उसकी स्वतः पहुँच खत्म हो जाएगी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां का मध्य पश्चिम का इलाका इस समय उत्तरी ध्रुव जैसे मौसम से जूझ रहा है। वहां पर बर्फीले चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी है, जिसके कारण अमेरिका के शिकागो जैसे शहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। अमेरिका के कई शहरों में इसके कारण आपातकाल लगा दिया गया है और कई लोगों के मर जाने की भी खबर है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
उत्तरी ध्रुव की ओर से चले बर्फीले चक्रवात की वजह से अमेरिका के बड़े इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई है। पिछले कई दशकों की सबसे भीषण ठंड अमेरिका के मध्य पश्चिमी राज्यों में पड़ रही है, जिसकी वजह से 9 करोड़ से अधिक लोग 0 से 17 डिग्री नीचे तापमान में रहने को मजबूर हैं। अभी तक कम से कम 7 लोगों की मौत भीषण ठंड की वजह से हो गई है। समूचे मध्य पूर्वी राज्यों में शहर पूरी तरह बंद हैं और लोग घरों में कैद हैं। स्कूल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और सरकारी दफ्तर बंद हैं और हजारों फ्लाइटें भी रद्द हो गई हैं। शिकागो शहर में पारा 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे है। शहर के मेयर ने लोगों से बाहर न निकलने की अपील की है। रियान कुकुरेक शिकागो में ही रहते हैं। यहाँ के हालात के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा,
It is unreal. My first experience of just stepping outside.
ये अविश्वसनीय है। मैंने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, ठंडी हवा का ऐसा थपेड़ा पड़ा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। ये ऐसा है जैसे हवा में ऑक्सीजन ही न रही हो, दम घुट रहा हो, और अगर आपकी नाक बह रही है तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि अचानक ही आपकी नाक जम जाती है। ये मेरे जीवन का सबसे अजीब अनुभव है। लोगों को इस भीषण मौसम से बचाने के लिए सरकारों ने भी कमर कस ली है और राहत और बचाव के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहरों में गर्म स्थल स्थापित किए गए हैं, जहां आकर लोग राहत ले सकते हैं। मिशिगन प्रांत के गवर्नर ग्रेशन विटमर ने बताया कि प्रशासन लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा,
We're trying to keep people safe, and you know, I know that there are essential workers who had to go to work today.
हम लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी कर्मचारी हैं जो आवश्यक सेवाओं में हैं और उन्हें इन हालातों में भी काम पर जाना है, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कई कारणों की वजह से घर पर नहीं रुक सकते हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि लोग मौसम की भयावहता को समझें और पूरी तैयारी रखें। इस ठंडे मौसम की चपेट में करीब 25 करोड़ अमरीकी रहेंगे और इनमें से 9 करोड़ ऐसे इलाकों में हैं जहां पारा 0 से 17 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फ गिरनी जारी रहेगी और कई इलाकों में 24 इंच तक बर्फ पड़ सकती है। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इलिनॉय के अलावा आमतौर पर गर्म रहने वाले दक्षिणी राज्यों अलबामा और मिसिसिपी में भी आपातकाल लगा दिया गया है।
अमरीका में बर्फीला चक्रवाती तूफान, रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। अब रुख करते हैं भारत का, जहां प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान हुई परम धर्म संसद में संतों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर दिया है। 3 दिन तक चली परम धर्म संसद के आखिरी दिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की मौजूदगी में ये घोषणा की गई। वहीं आज से विश्व हिंदू परिषद भी 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन कर रहा है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
कुंभ क्षेत्र में 3 दिन तक चली परम धर्म संसद के आखिरी दिन राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर दिया गया।
परम आराध्य परम धर्माधीश जी ने जो तिथि निश्चित की है वह है फाल्गुन कृष्ण द्वितीया, अंग्रेजी तारीख है 21 फरवरी 2019।
शंकराचार्य के प्रतिनिधि के तौर पर गंगा सेवा अभियान के प्रमुख स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस कार्य के लिए संत कुंभ क्षेत्र से ही सीधे अयोध्या कूच कर देंगे।
बसंत पंचमी के बाद हम प्रयाग से ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके लिए यदि हमें गोली भी खानी पड़े या जेल भी जाना पड़े तो हम प्रस्तुत हैं। यदि हमारे इस कार्य में सत्ता के 3 अंगों में से किसी के द्वारा अवरोध डाला गया तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण हिंदू जनता को यह धर्मादेश जारी करते हैं कि जब तक श्री राम जन्मभूमि विवाद का निर्णय नहीं हो जाता अथवा हमें श्री राम जन्मभूमि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक हिंदू का यह कर्तव्य होगा कि वह चार इष्टिकाओं को लेकर अयोध्या जाए और यदि उनको इसके लिए गिरफ्तारी देना हो तो दे।
इस परम धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार की ओर से कोई कोशिश न होने की आलोचना और गंगा सफाई पर संकल्प समेत कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। आयोजकों की ओर से दावा किया गया है कि इस धर्म संसद में दुनिया भर से सनातन धर्म से जुड़े प्रतिनिधि आए थे और धर्म संसद के एजेंडे में शुरू से ही राम मंदिर निर्माण की तारीख तय करना भी शामिल था। इस बीच आज से दो दिन की धर्म संसद कुंभ क्षेत्र में ही विश्व हिंदू परिषद भी आयोजित कर रही है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वीएचपी की धर्म संसद में भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर किसी खास घोषणा की उम्मीद की जा रही है, लेकिन शंकराचार्य की घोषित तिथि से वो अपने को अलग ही रख रही है। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल कहते हैं,
विश्व हिंदू परिषद और पूज्य संत ही इस संपूर्ण आंदोलन को शुरू से लेकर के अंत तक जो है वो लीड करते रहे हैं और अभी भी वही लीड करेंगे। हमारा कहना यह है कि देखिए, मंदिर शीघ्र बनना चाहिए, जन्म स्थान पर बनना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई डिवीजन ऑफ लैंड और जमीन का हस्तांतरण कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब चाहे संसद से बने या संविधान से बने।
इस बीच अखाड़ा परिषद का कहना है कि मंदिर निर्माण की पहल जो भी करेगा परिषद उसका साथ देगा। परम धर्म संसद में ये तो कहा गया है कि 21 फरवरी को वो शिलान्यास करेंगे, लेकिन किस जगह करेंगे इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अब देखना यह है कि वीएचपी की धर्म संसद में मंदिर निर्माण की कोई अलग तिथि घोषित होती है या फिर संत कंधे से कंधा मिलाकर चलने का फैसला करते हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 4 महीने पहले बैंक के मुख्य पदों से इस्तीफा देने वाली कोचर को कल हुई बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के बाद CEO और MD पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इसको टर्मिनेशन फॉर कॉज कहा गया है। इसके अलावा चंदा कोचर को बैंक की तरफ से जो भी बोनस दिए गए थे उन्हें वापस वसूला जाएगा। वहीं चंदा ने कहा है कि वो इस फैसले से निराश हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको विस्तार से जानने के लिए हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने बीबीसी के आर्थिक मामलों के संवाददाता समीर हाशमी से बात की।
देखिए, चंदा कोचर जो है, जो ICICI बैंक, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, इसकी काफी अरसे तक मैनेजिंग डायरेक्टर थी और CEO भी थी। इनके ऊपर काफी कड़े आरोप लगे थे पिछले साल कि इन्होंने जो है अपने, जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर थी, इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए, उन लोगों वीडियोकॉन के जो कंपनी है उसको लोन दिया था और वीडियोकॉन कंपनी ने बाद में इनके पति के कंपनी में, एक नई कंपनी में पैसा डाला था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कहा जाता है उसका एक आरोप लगा था, बड़ा गंभीर आरोप लगा था इनके ऊपर। तो इस सिलसिले में ICICI बैंक ने चंदा कोचर के इन सब आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमिटी बनाई थी और इस कमिटी के जो अध्यक्ष थे वो BN श्री कृष्णा थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। उस कमिटी ने अपनी एक रिपोर्ट दर्ज की इंक्वायरी के बाद और उसमें ये निकला है कि चंदा कोचर जो है एज द हेड, क्योंकि बैंक में अगर आप देखें तो एक कमिटी होती है जो डिसाइड करती है कि जो बड़े रकम की जो लोन होती है जो कंपनियों को दी जाती है, जो 1000 करोड़ के, 100 करोड़, 1000 करोड़ के तकरीबन बड़ी होती है, इन सब उधारों के ऊपर या लोन्स के ऊपर फैसला लेने के लिए कमिटी बैठती है और इस कमिटी की हेड जो थी वो चंदा कोचर थी और इस कमिटी ने डिसाइड किया था कि वीडियोकॉन को पैसा देंगे, हालांकि वीडियोकॉन ने चंदा कोचर की पति के कंपनी में पैसा डाला था। तो इस सिलसिले में इस कमिटी ने ये कंक्लूड किया है कि चंदा कोचर की गलती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस कंपनी को वो ये लोन देने जा रही हैं उस कंपनी ने उनके पति के कारोबार में पैसा लगाया है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए उनको या तो इस कमिटी में नहीं होना चाहिए था या फिर ये पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए था कि वीडियोकॉन कंपनी ने उनके पति के कारोबार में पैसा लगाया है। ये दोनों चीजें उन्होंने नहीं की, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला लिया है कि चंदा कोचर के खिलाफ जो है थोड़े कदम उठाए जाएंगे। अब बैंक ने ये कहा है कि 2008 से लेकर अब तक, जब तक चंदा कोचर इनके साथ थी पिछले साल तक, 10 साल तक मैनेजमेंट डायरेक्टर की हैसियत में, उस दौरान जितनी भी जो पैसे दिए गए थे चंदा कोचर को, जैसे बोनस हो गया या बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं उस पोजीशन के ऊपर, वो सब वापस लिया जाएगा और ऐसी अगर कोई रकम बाकी है जो चंदा कोचर को देनी बाकी है, क्योंकि उन्होंने बैंक एकदम से छोड़ दिया था, वो रकम उनको नहीं दी जाएगी और उस सिलसिले में कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे।
टर्मिनेशन ऑफ कॉज ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब भी मैं समझना चाहूंगा हमारे श्रोताओं के लिए कि इसका मतलब क्या होता है जब टर्मिनेशन ऑफ कॉज कहा जाता है। तो
एक साधारण, ये टेक्निकल टर्म है लेकिन साधारण शब्दों में अगर कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्ड में आमतौर पर होता यह है कि आप ये कंपनी से जब जाते हैं तो अलग अलग वजह होती है जाने के लिए। आप छुट्टी पे जाते हैं, लंबी छुट्टी पे जाते हैं, या कभी कभी आप एक ब्रेक पे जाते हैं, कभी कभी आप अनपेड लीव पे जाते हैं। टर्मिनेशन ऑफ कॉज का मतलब ये हुआ है साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ कि ये लीव पे नहीं यानी छुट्टी पे नहीं बल्कि इनको दरखास्त कर दिया गया है। तो आगे चल के अगर कोई भी रिकॉर्ड देखेगा ICICI का तो ये कहेगा कि इस तारीख से चंदा कोचर को दरखास्त कर दिया गया था बैंक से।
ये थे BBC के आर्थिक मामलों के संवाददाता समीर हाशमी। श्रोताओं, अब समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां का। बीते कई सालों से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के सामने अब एक विकट राजनीतिक संकट है। विपक्षी नेता खुआन गोइदो ने मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अवैध बताकर खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। गोइदो के पक्ष में पहले अमरीका और उसके बाद करीब 20 अन्य देश आ गए, तो वहीं रूस समेत कई देश मादुरो का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वेनेजुएला का आर्थिक और राजनीतिक संकट क्या है और इसमें आखिर अमेरिका की क्या दिलचस्पी है, दुनिया जहां में सुनिए BBC संवाददाता संदीप सोने की यह पड़ताल।
दुनिया जहान।
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में विपक्ष के नेता खुआन गुआइडो को सुनने के लिए उनके समर्थक जुटे हैं। समर्थकों की नारेबाजी से उत्साहित खुआन गुआइडो सेना से अपने लिए समर्थन मांगते हैं।
भाइयों, संविधान के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है जब आपको वेनेजुएला के लोगों के सम्मान के लिए खड़ा होना है।
उनके निशाने पर है निकोलस मादुरो।
Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto.
मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, लेकिन विपक्षी गुआइडो ने खुद को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। झगड़ा क्या है, बता रहे हैं वेनेजुएला में भारत के पूर्व राजदूत निरंजन देसाई।
बेसिकली ये दिक्कत है प्रेसिडेंसी और नेशनल असेंबली के बीच में है। कांग्रेस बोलते हैं ना, कांग्रेस वो अपोजिशन कंट्रोल करती है। इनको बाईपास करने के लिए मदुरो ने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट किया था। वो सब लेजिस्लेटिव पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को देना चाहते थे और वो नेशनल असेंबली को पैरालाइज करना चाहते थे। तो इसमें से ये झगड़ा हुआ रहा है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जो गुआइडो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है और मदुरो इलीगल प्रेसिडेंट है क्योंकि इलेक्शन में बहुत रिगिंग हुआ था।
चुनाव में धांधली के आरोप के अलावा वेनेजुएला में और क्या हुआ जिससे गुआइडो को मादुरो को घेरने का मौका मिला?
एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत है, वहाँ फूड नहीं मिल रहा है, स्टोर्स एम्प्टी हैं। वेनेजुएला ऑयल प्रोड्यूसर है मगर रिफाइंड प्रोडक्ट अभी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के साथ ये नेशनल असेंबली के कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने ये मूव लिया है, क्योंकि जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स रिकग्नाइज देम इमीडिएटली। जो इनका आर्थिक प्रॉब्लम है, इसका एडवांटेज या उनके अपॉर्चुनिटी लेकर ये रेजिम चेंज का मामला है।
गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका से मान्यता मिलने के बाद मादुरो को लगा कि बात बहुत आगे बढ़ गई है। उन्होंने अमेरिका से अपने सभी राजनयिकों और कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया।
इसमें कोई संदेह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिट्ठू और असंवैधानिक सरकार वेनेजुएला पर लादना चाहते हैं। ट्रंप वेनेजुएला के लोगों और लोकतंत्र के खिलाफ बगावत चाहते हैं। ट्रंप खुद को लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई देशों का बॉस समझते हैं।
वेनेजुएला में अमरीका की इस भूमिका को भारत के पूर्व राजदूत निरंजन देसाई सही नहीं मानते।
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी आदमी डिक्लेयर कर लें कि मैं इंटरिम प्रेसिडेंट हूँ, आप उनको रिकग्नाइज कर दें। एक बार सोचिए, आप अमेरिका में प्रॉब्लम हो गया और जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंट स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो बोलती है मैं इंटरिम प्रेसिडेंट हूँ, ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो अमेरिका एक्सेप्ट करेगा? ये तो बिल्कुल गलत बात है।
लेकिन इस तथ्य को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि वेनेजुएला आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई आसमान छू रही है और लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए तरस रहे हैं। हर दिन मुश्किल होती जिंदगी को आसान बनाने की उम्मीद के साथ लाखों लोग वेनेजुएला से पलायन कर गए हैं। वेनेजुएला में अमेरिका के पूर्व राजदूत चार्ल्स शैपिरो सेना की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
मुझे लगता है कि मादुरो को जब तक सेना का समर्थन हासिल है तब तक वो आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। एक दशक में काफी कुछ बदल गया है। सेना और पुलिस को अब नागरिकों पर गोली चलाने में संकोच नहीं होता। हालिया प्रदर्शनों के दौरान सेना की कार्रवाई से ये साबित हो गया है।
राष्ट्रपति मादुरो के तेवर देखकर अमेरिका बौखला गया है। जानकार मानते हैं कि वेनेजुएला में असल खेल तो तेल का है। पृथ्वी पर तेल का सबसे अधिक सुरक्षित भंडार वेनेजुएला की जमीन के नीचे है, लेकिन आर्थिक बदहाली उसे तेल निकालने से रोक रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान वेनेजुएला को हो रहा है। संकट जारी रहा तो बाकी दुनिया इसकी जद में आने से बच नहीं पाएगी। भारत के पूर्व राजदूत निरंजन देसाई,
अभी तो हम काफी ऑयल ले रहे हैं वेनेजुएला से। हमने आई थिंक इन्वेस्ट भी किया है ऑयल फील्ड्स में। अभी देखो अमेरिका में वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर इज कंपनी कॉल्ड सिटको, उनकी काफी रिटेलिंग में है, वो वेनेजुएला की कंपनी है। उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो अभी ऑयल सप्लाई कम होगी तो प्राइस तो ज्यादा बढ़ेगी, तो इट विल अफेक्ट इंटरनेशनली।
अमरीका राष्ट्रपति मादुरो को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में उसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राजील और कनाडा जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन भी वेनेजुएला में नए सिरे से चुनाव की मांग कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति मादुरो भी अकेले नहीं है। रूस, चीन, इराक और तुर्की उनके समर्थन में आगे आए हैं। ऐसे में लगता नहीं कि वेनेजुएला में सत्ता की लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई है।
मेरे ख्याल में ये रशिया और चाइना की इन्वॉल्वमेंट अब काफी है वेनेजुएला में। कुछ महीने पहले रूस ने अपने बॉम्बर्स वहां भेजे थे वेनेजुएला, तब अमेरिका ने काफी प्रोटेस्ट किया था। और चीन के साथ संबंध काफी गहरा है, इसलिए अमेरिका ने शायद ये स्टेप लिया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी लैटिन अमेरिका की तरफ अच्छी नहीं है। आपने देखा है वो मेक्सिको के साथ वॉल बनाने के लिए सारा गवर्नमेंट शटडाउन कर दिया इतने दिन। अभी यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बीच में काफी तनाव है ट्रेड के बारे में, और रशिया के साथ भी काफी तनाव है। और आपने सुना ही होगा कि अमेरिका भी चाइनीज कंपनी है हुआई, ये बड़ी आईटी कंपनी है, उसको अपने सब एलायंस को बोल रहे हैं इसको ब्लॉक कर दें।
वेनेजुएला के इस संकट पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। पोप ने कहा है कि ऐसा हर संभव कदम उठाना चाहिए जिससे वेनेजुएला के लोगों की बढ़ती तकलीफों को कम किया जा सके। जानकार मानते हैं कि वेनेजुएला का घटनाक्रम ये बताता है कि यदि आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं है तो बाहर वाले इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर देशों के साथ विश्व राजनीति में यही होता है। ताकतवर देश अपने से कमजोर देश के मामले में दखल देते हैं और संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी उन्हें रोक नहीं पाता। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन फिलहाल वेनेजुएला के मामले में सच ये है कि सेना जिसके साथ होगी सत्ता उसी का राज तिलक करेगी।
दुनिया जहां पेश कर रहे थे संदीप सोनी। श्रोताओं, ये आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। अब जान लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबार क्या कह रहे हैं। और श्रोताओं, मैं एक बार आपको बता दूं, स्टूडियो में इस वक्त दिलनवाज पाशा मेरे सामने बैठे हुए हैं और इन्होंने पूरा का पूरा अखबारों का एक जमघट लगा रखा है और फैला रखे हैं तरीके तरीके से, एकदम मोड़ के सारे अखबार। बताएं दिलवाज, क्या क्या है इन सारे अखबारों में?
जी, खबरें तो बहुत हैं, लेकिन एक खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है चंदा कोचर को दोषी करार दिया जाना और बैंक का उन्हें बर्खास्त करना। अलग अलग अखबारों ने इस खबर को अलग अलग तरीके से लिया है। वहीं कल प्रयागराज से जो आवाज उठी, हिंदू संतों ने कहा कि मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान किया, 21 फरवरी से शुरू होगा, इसको भी अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरीके से प्रकाशित किया है। कल 30 जनवरी थी, यानी महात्मा गांधी का देहांत इसी दिन हुआ था, उनका कत्ल कर दिया गया था। इससे जुड़ी हुई खबरें हैं मेरे हाथ में जनसत्ता है, जिसमें दिल्ली की तस्वीर है महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उदास बैठे हैं
पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद।
जी बिल्कुल। एक और तस्वीर है द हिंदू में प्रकाशित है, दिल्ली के ही कनॉट प्लेस पर तोप का गोला दाग कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। और इंडियन एक्सप्रेस में एक तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह मेमोरियल का जो है दांडी यानी नवसारी में गुजरात के उद्घाटन किया, तो एक और तस्वीर है। लेकिन एक तस्वीर और है जो आज के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित है और ये है अलीगढ़ से जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता महात्मा गांधी के पुतले पर गोली दागने का फोटो सेशन करा रहे हैं।
ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है दिलनवाज, और इसमें इस तरीके से दिखाया गया है कि गोली मारने के बाद उसके नीचे से खून भी बह रहा है।
जी बिल्कुल। और इसी पर शीर्षक लगाया है हे राम बापू को मारने का फोटो सेशन।
उसके बाद उस पुतले को जलाया भी गया।
जी बिल्कुल। और अब जिक्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित आज एक खबर का जिसमें दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक मासूम जो है 7 दिन से उसको वेंटिलेटर नहीं मिला है, तो उसका परिवार 7 दिन से अम्बू बैग से उसे ऑक्सीजन दे रहा है और इसी का संज्ञान लिया है कोर्ट ने और अस्पताल से कहा है कि इस बच्चे को जो है वेंटिलेटर उपलब्ध कराया जाए,
यानी सरकारी अस्पताल की एक और खस्ता हालत।
जी बिल्कुल। और द टाइम्स ऑफ इंडिया आज का बता रहा है कि जो मिनिमम इनकम गारंटी योजना जिसकी बात कही जा रही है, राहुल गांधी ने कहा है यदि इसको वास्तविक किया गया तो इस पर कम से कम 7 लाख करोड़ तक का खर्च आ सकता है, यानी सरकार पर इतना भार पड़ेगा यदि सभी लोगों के बैंक खातों में एक न्यूनतम राशि देने की योजना लाई गई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो विपक्ष है वो रफाल के मुद्दे को संसद में उठाने की पुरजोर तैयारी कर रहा है।
दिलनवाज बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से अखबार आपने फैला रखे थे उसके हिसाब से आपने उस तरीके से समीक्षा भी कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और श्रोताओं आप सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की सीरीज का 4वां मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने 5 में से 3 मुकाबले जीतकर ये श्रृंखला अपने नाम कर ली है। आज जो मुकाबला होगा उसमें विराट कोहली नहीं होंगे। वरिष्ठ खेल पत्रकार आयास मेमन कहते हैं कि बेशक विराट कोहली को मिस किया जाएगा लेकिन ये मौका होगा कुछ खिलाड़ियों के लिए कि वो ये साबित करे वर्ल्ड कप से पहले कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप की टीम में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।
देखिए विराट कोहली जैसा बल्लेबाज इन देशों में है नहीं, जिस तरह फिलहाल इंडियन टीम लय में है मुझे लगता है कि विराट अगर नहीं भी रहे हैं, सीरीज तो जीत गई है इंडिया लेकिन कोशिश यही होगी कि 5 मैचेस जीते, क्लीन स्वीप करे। बड़ी बात अब यह है कि एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला है क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए जगह भरनी है और 2-4 जो ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे केदार जाधव, दिनेश कार्तिक वगैरह, इनकी अभी तक थोड़ा सा डाउट है कि टीम में होना चाहिए। हार्दिक पांड्या है, खलील अहमद है और मोहम्मद सिराज है, दोनों तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है कि वर्ल्ड कप जाएंगे लेकिन एक ही जगह बन सकती है, तो ये सब प्लेयर्स जो है इनके लिए मौका बनता है ये दो आने वाली मैचेस में कि अपने आप को प्रूव करें।
तो आज 4वां मुकाबला माउंट मोगनुई में। आपको बता दें कि आज भारतीय ओपनर रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 4थे वनडे में उतरने के साथ ही करियर में 200 वनडे पूरे कर लेंगे। वो इस आंकड़े तक पहुंचने वाले 15वें भारतीय होंगे। रोहित ने 2007 में अपना पहला मुकाबला खेला था। अब बात करते हैं हॉकी की। महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगलवार को अपने दौरे के 3रे मैच में विश्व कप के कांस्य पदक विजेता स्पेन को 5-2 से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की और अब स्पेन और भारत के बीच अगला मुकाबला होगा 31 जनवरी को यानी आज। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
उत्तरी ध्रुव की ओर से अमेरिका की ओर बढ़ रहे बर्फीले चक्रवाती तूफान की वजह से अमेरिका के मध्य पश्चिम इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। इस वजह से कम 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में विपक्ष नेता खुआन ग्वाइदो को फोन करके अमरीकी समर्थन का भरोसा दिया है। सऊदी अरब ने साल 2017 में शुरू की गई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम खत्म करने की घोषणा की है। इस दौरान सैकड़ों राजकुमारों और अपतियों और उद्योगपतियों को हिरासत में रखा गया था। सऊदी अरब की सरकारी समाचार सेवा के मुताबिक इन रईसों से $100 अरब से अधिक जब्त किए गए हैं। साल 2018 की अंतिम तिमाही में टेक्नोलॉजी कंपनी फेसबुक ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलकराज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।